डॉक्टर रॉबर्ट यारब्रो, पास्टोरल एपिस्टल्स, सत्र 5, 1 तीमुथियुस 4, 2024, रॉबर्ट यारब्रो और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर रॉबर्ट डब्ल्यू यारब्रो और देहाती पत्रों पर उनकी शिक्षा, देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए प्रेरितिक निर्देश है। सत्र 5, 1 तीमुथियुस 4। खैर, हम देहाती पत्रियों के अपने अध्ययन के एक और अध्याय पर आते हैं, और 1 तीमुथियुस में हम 1 तीमुथियुस 4 में हैं, जब हम देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए प्रेरितिक निर्देश को देखते हैं। और हम पहले ही देख चुके हैं कि पॉल इफिसुस में एक स्थिति को संबोधित कर रहा है, जहां पॉल के निर्देशन में प्रभारी पादरी नेता का नाम तिमोथी है, और उसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है, जो शायद पुराने नियम के कानून पर आधारित लगता है। और कुछ भ्रम हो गया है, और यहां तक कि कुछ व्यक्ति भी सुसमाचार के विरोधियों, चर्च के विरोधियों के रूप में उभरे हैं, शायद तीमुथियुस के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम चर्च में आगे बढ़ रहे हैं, पॉल ने चीजों को स्थिर करने और नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए नींव रखना शुरू कर दिया है। और हमने सोचा होगा, ठीक है, यह एक काफी प्रबंधनीय स्थिति है और तिमोथी इसे संभाल सकता है। लेकिन हम अब यह पता लगाने जा रहे हैं कि तिमोथी उसी में है जिसे मैंने एक पादरी को डीप वीड्स कहते हुए सुना है। वह अब जंगल में है क्योंकि चीजें चुनौतीपूर्ण हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके पास ये झूठे शिक्षक और कुछ व्यक्ति हैं, बल्कि हमारे पास काम पर आध्यात्मिक ताकतें हैं जो हमें अधिनियम 19 की याद दिलाती हैं, और वह स्थान जहां इफिसस था, इन जीवन शैली का प्रभुत्व था, और ये प्रथाएं एक तरह से अपवित्र और अनैतिक इत्यादि को आमंत्रित करती प्रतीत होती हैं। तो 1 तीमुथियुस अध्याय 4 में आत्मा को बड़े अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि हम उन शब्दों को बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं जिनका सीधा संबंध ईश्वर से है। आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि बाद के समय में कुछ लोग विश्वास को त्याग देंगे और भ्रामक आत्माओं और राक्षसों द्वारा सिखाई गई चीजों का पालन करेंगे। मैं खुद को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं यहां क्या देखने जा रहा हूं। हम पहले ही हाइमेनियस और अलेक्जेंडर के विश्वास को त्यागने के बारे में सुन चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह चल रहा है। ऐसी शिक्षाएं पाखंडी झूठे लोगों के माध्यम से आती हैं, और मैं इसे उन शिक्षाओं से जोड़ने जा रहा हूं जिनके बारे में हमने पहले ही उन लोगों द्वारा सुना है जो नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। और इन लोगों का विवेक गर्म लोहे से दाग दिया गया है। इसका मतलब है कि वे यह समझने में सक्षम नहीं हैं कि वे गलत हैं या वे कैसे गलत हैं। वह बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। और कभी कभी हम ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जो हत्या जैसे आपराधिक कृत्यों के दोषी हैं। और तब हमें पता चला कि जब वे बच्चे थे तो उन्हें कुत्तों पर अत्याचार करना पसंद था, और सामान्य मानवीय धारणा रखने में रोग संबंधी अक्षमता के विकास का एक प्रकार है। खैर, आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा होता है। लोग धर्म की शिक्षा और शिक्षा दे सकते हैं, ईसाई धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में पाखंडी झूठे हैं, और उनकी अंतरात्मा अब उन पर चिल्लाकर नहीं कहती, इसे रोको, तुम गलत कर रहे हो। वे यह भी सोच सकते हैं कि वे सही कर रहे हैं। और यहां उन झूठी शिक्षाओं के परिणामों के उदाहरण दिए गए हैं जिनके बारे में पॉल को पता है। वे लोगों को शादी करने से मना करते हैं, और चर्च के इतिहास में ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जो सांप्रदायिक रूप से एक साथ रहते थे। उन्होंने फैसला किया कि चूंकि उन्हें बचा लिया गया है और उनके सभी पाप माफ कर दिए गए हैं, वे जैसे चाहें खुद को भोग सकते हैं, और जो कुछ भी उन्हें खुशी और खुशी देता है उसमें भगवान थे, क्योंकि यह कहता है कि सदैव प्रभु में आनंदित रहो। इसलिए उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक साथ सेक्स किया। मेरा मतलब है, चर्च के इतिहास में चर्च के नाम पर ऐसा हुआ है। और जब हम उस आधार पर शादी से इनकार करते हैं, तो यह एक पाखंडी झूठ है। आज लोगों पर विवाह पर प्रतिबंध लगाने का प्रभाव है, क्योंकि वे युवाओं या यहां तक कि चर्च में ईसाइयों को बताते हैं, यह नहीं कि वे एक सृजन आदेश और एक महान आयोग के तहत हैं, बल्कि यह कि उन्हें आत्म साक्षात्कार करना चाहिए और उन्हें सबसे पहले अपने करियर की चिंता करनी होगी। और इसलिए किशोरावस्था में बच्चे, वे विश्वविद्यालय जाते हैं और फिर वे स्नातक स्कूल जाते हैं और फिर वे 20 के दशक में होते हैं, वे 30 के दशक में होते हैं, उन्होंने अभी भी शादी नहीं की है। वे शादी नहीं कर सकते क्योंकि यह संस्कृति की नज़र में बहुत अपमानजनक होगा, और खासकर तब जब आप माँ बन जाएं। और ऐसा नहीं है कि ये सभी लोग पवित्रता और पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग सेक्स कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे सभी हैं, लेकिन यह सामान्य है कि यदि आप 20 वर्ष के हैं, तो महीनों और एक वर्ष के दौरान आप कहीं न कहीं यौन रूप से सक्रिय होंगे, लेकिन आप शादी नहीं करेंगे क्योंकि यह बर्बाद हो जाएगा आपका करियर। यह तुम्हें रोकेगा। आप इस दूसरे व्यक्ति के करियर के प्रति आभारी नहीं रहना चाहते। आप अपना करियर बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहते हैं और आप निश्चित रूप से बच्चे नहीं चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अधिकांश संस्कृतियों में हम ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं जहां ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण की वकालत करने वाले लोग होंगे जो एक पति और एक पत्नी, एक पुरुष और एक महिला के लिए विवाह की वाचा के लिए खुले रहने के ईश्वर के आह्वान के साथ टकराव करते हैं ताकि वे इसे पूरा कर सकें। सृजन जनादेश और उनके घर के संदर्भ में एक महान कमीशन सूक्ष्म जगत है। साथ ही वे उन्हें कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करने का भी आदेश देते हैं। और उपवास की परंपराएं या शाकाहारी परंपराएं या इसे न पीने या वह न खाने या केवल निश्चित समय पर खाने और पीने की परंपराएं हैं। भगवान ने भोजन बनाया, भगवान ने विवाह बनाया ताकि विश्वास करने वाले और सच्चाई जानने वालों को धन्यवाद दिया जा सके। और उस मामले में हर किसी के लिए शादी हर किसी के लिए एक अच्छी बात है। भगवान ने जो खाद्य पदार्थ बनाए हैं वे सभी के लिए अच्छे हैं, विशेष रूप से चर्च के लिए। और पॉल इसी बात को लेकर चिंतित है। वह चर्च में झूठी शिक्षा के बारे में चिंतित है, जिसके कारण भगवान के अच्छे उपहारों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनसे परहेज किया जा रहा है और उन तरीकों से लिया जा रहा है जो अनावश्यक रूप से जटिल हैं, जबकि धन्यवाद होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए। हमें ईश्वर के अच्छे उपहारों का आनंद लेना चाहिए और इन झूठी शिक्षाओं के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते। जो कुछ भी बनाया गया है उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वह अच्छा है और कुछ भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है यदि इसे धन्यवाद के साथ प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यह प्रार्थना में ईश्वर के वचन द्वारा पवित्र किया गया है। अब पॉल का मतलब है कि किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए यदि वह ईश्वर की इच्छा की आत्मा के भीतर प्राप्त एक वैध पदार्थ है। एक अर्थ में सभी पदार्थ भगवान द्वारा बनाए गए हैं और जैसे मतिभ्रम पैदा करने वाली दवाएं भी हैं। लेकिन वह यहां यह नहीं कह रहा है, यह बनाया गया है और इसलिए भगवान ने मतिभ्रम पैदा करने वाली दवाएं ली। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने नहीं किया, वह मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में बात नहीं कर रहा है। वह भोजन और विवाह और सामान्य अनुग्रह के साधन, सूरज की गर्मी और वसंत हवा की गंध और सिंचाई के लिए पानी, उन सभी चीजों के बारे में बात कर रहा है जो भगवान ने बनाई हैं। यह ईश्वर की कृपा से आनंद लेने के लिए एक अच्छी दुनिया है और यह फलने फूलने, गुना करने, पृथ्वी को फिर से भरने और इसे अपने वश में करने का हिस्सा है। हम सृजित संसार में मौजूद संसाधनों का उपयोग करते हैं और हमें उन चीजों को अनावश्यक रूप से अस्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे प्रार्थना में परमेश्वर के वचन द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम परमेश्वर के वचन से इन चीजों का सही उपयोग सीखते हैं और परमेश्वर के साथ संवाद, परमेश्वर के साथ प्रार्थना और परमेश्वर की पूजा में इन चीजों का उपयोग उन तरीकों से किया जाता है जो परमेश्वर को सम्मान दिलाते हैं। मैं इस अनुच्छेद के बारे में देखूंगा कि बाकी पुनरुत्थान के बाद से बाद के समय आ गए हैं। मुझे लगता है कि लोग एक सामान्य गलती करते हैं क्योंकि अनुवाद अंतिम समय के बारे में कहते हैं और फिर लोग युगांत शास्त्र और उत्साह और इस तरह की सभी चीजों के बारे में किसी किताब के बारे में सोचते हैं। और मुझे नहीं लगता कि पॉल अपने भविष्य की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि वह अपने वर्तमान की बात कर रहा है जिसके बारे में ईसाई अध्ययन में हम पहले से ही बात करते हैं और अभी तक नहीं। मसीह पहले ही जी उठे हैं और इसलिए जब वे जी उठे तो युग का अंत आ गया। मौत हमेशा के लिए हार गई। यही एक कारण है कि हमें आशा है और एक कारण है कि हमें खुशी है क्योंकि हम मसीह और शैतान और बुराई के बीच लड़ाई के नतीजे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मृत्यु ने अनंत काल तक निराश किया है लेकिन हम अभी तक भगवान के वादे की पूर्ति की पूर्णता नहीं देख पाए हैं। हमें अभी तक महिमामंडित नहीं किया गया है। मसीह वापस नहीं आए। दुनिया परिवर्तित नहीं हुई है। फिर भी पुनरुत्थान के बाद से बाद के समय आ गए हैं और भगवान की अच्छी सामान्य कृपा साथ ही उनकी विशेष कृपा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उनका विरोध किया जा रहा है। मसीह पहले से ही भगवान हैं, लेकिन हम अभी तक हर जगह उनका प्रभुत्व नहीं देखते हैं क्योंकि जैसा कि मैं बोलता हूँ और यह वही तारीख होगी जो मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि निकट भविष्य में लोग इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और वहां हो रही क्रूरताएं और लोग चिल्ला रहे हैं, कब तक हे भगवान और क्यों भगवान? भगवान के अच्छे उपहारों को क्यों तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उनका विरोध क्यों किया जा रहा है ताकि लोगों पर बमबारी की जा रही है और रेलवे स्टेशनों और स्कूलों में बच्चों को मार दिया जा रहा है। वे दुश्मन के लड़ाके नहीं हैं, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग दुनिया में अपने राजनीतिक दृष्टिकोण की खातिर जानबूझकर बच्चों को मार डालेंगे। परमेश्वर के वचन और प्रार्थना हमारे संरक्षण और मार्गदर्शन के साधन हैं। दुनिया, शादी, खाना, वो चीजें हैं। उनकी पुष्टि की जानी है। उन्हें हमारे आनंद और भरण पोषण का स्रोत होना चाहिए और एक कारण यह है कि हमें पादरी नेताओं की जरूरत है, हमें धर्मनिष्ठ महिला शिष्यों की जरूरत है, हमें धर्मनिष्ठ पुरुष शिष्यों की जरूरत है ताकि चर्च में चर्च उन लोगों से भरा रहे जिनका पालन पोषण किया जा रहा है शब्द और जो प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं ताकि हम लगातार विवाह की अच्छाई, हमारे भोजन की अच्छाई, एक रात की नींद की अच्छाई की पुष्टि कर सकें ताकि हम उत्साहित रह सकें, स्वस्थ आहार लेने के लिए प्रेरित हो सकें और स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ व्यायाम करें, अपनी आवश्यक नींद लें। मुझे पता है कि बीमारियां आती हैं और हम सभी सुखद जीवन नहीं जी सकते हैं, लेकिन कभी कभी लोग जीवन में बहुत निराश और निराश हो जाते हैं क्योंकि वे जीवन को उस उपहार के रूप में नहीं मानते हैं जो यह है और उन्हें आभारी होने में कठिनाई होती है क्योंकि वे अपनी नाराजगी से इतने दबे हुए हैं कि चीजें दयनीय हो गई हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर भगवान की महिमा करने के लिए हमें उन छोटे तरीकों से शुरुआत करनी होगी जिनसे वह हमें आशीर्वाद देता है और मुझे लगता है कि वस्तुतः हर कोई ऐसी चीजें पा सकता है जो बहुत बदतर हो सकती हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह उतना बुरा नहीं है जितना कि यह हो सकता है। केवल हम ही हैं। धन्यवाद करने के लिए एक चीज है और वह है भगवान। वह कोई वस्तु नहीं है, वह एक अस्तित्व है। क्योंकि यदि शैतान न होता तो हम कल मर गए होते। वह झूठ और हत्या का स्वामी है, लेकिन भगवान जीवन और वादे का भगवान है और इसलिए हर अच्छा और सही उपहार ऊपर से है। रोशनी के पिता जेम्स कहते हैं, हर अच्छा और सही उपहार। तो पॉल यहाँ संक्षेप में कह रहा था, यह अंत का समय है, पुनरुत्थान आ गया है, मसीह किसी भी समय वापस आ सकता है। लोग चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं ताकि दुनिया की अच्छाइयों का लुत्फ न उठाया जा सके। वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, ताकि आप एक दयनीय दुनिया के इन दृश्यों का शिकार न हो, जिससे हम केवल इसका अच्छी तरह से उपयोग न करके ही बच सकते हैं। यदि आप भाइयों और बहनों को ये बातें बताते हैं, पद 6, तो आप मसीह यीशु के एक अच्छे सेवक होंगे, विश्वास की सच्चाइयों और उस अच्छी शिक्षा से पोषित होंगे जिसका आपने पालन किया है। वहां पीले रंग पर ध्यान दें, अच्छा सेवक, वह एक डायकोनोस है, मसीह यीशु का एक मंत्री है। अब एक आदेश का ईश्वर विहीन मिथकों और पुरानी पत्नियों की कहानियों से कोई लेना देना नहीं है। यह एक ग्रीक शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है, मेरा मतलब है, इसका मतलब एक ही तरह का है। और मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था और अपनी दादी को सुनता था और वह बाहर देश में रहती थी और कुछ बातें जो वह कहती थीं, वे पागलपन भरी लगती थीं। और विशेष रूप से जब वह फोन पर आई और उसने अन्य महिलाओं से बात की तो उन्होंने कुछ पागलपन भरी बातें की। और मुझे लगता है कि बहुत सारी संस्कृतियों में ऐसी चीजें होती हैं जो एक तरह से अजीब होती हैं। और पॉल इसे उन चीजों के लिए एक सादृश्य की छवि के रूप में उपयोग करता है जिनके बारे में धर्म में बात की जाती है। इन निरर्थक पौराणिक कथाओं और दर्शनों में मत पड़ो, बल्कि, और यह एक एथलेटिक शब्द है, अपने आप को प्रशिक्षित करें, अपने आप को ईश्वरीयता के लिए प्रशिक्षित करें। अब NIV का अनुवाद ईश्वरीय होना है, लेकिन यह यूसेबियन के लिए है, स्वयं को ईश्वरीयता के लिए प्रशिक्षित करें। शारीरिक प्रशिक्षण का कुछ महत्व है। वह शारीरिक फिटनेस का अवमूल्यन नहीं कर रहा है, लेकिन ईश्वर भक्ति का सभी चीजों के लिए मूल्य है। वर्तमान जीवन और आने वाले जीवन दोनों के लिए वादा करना। अब यहाँ एक और भरोसेमंद कहावत है। यह एक विश्वसनीय कहावत है जो पूर्ण स्वीकृति के योग्य है। और इस मामले में वह भरोसेमंद कहावत पीछे मुड़कर देखती है, अपने आप को इस कारण से प्रशिक्षित करें और उसे बैंक में ले जाएं। एक मिनट के लिए भी संदेह न करें कि यदि आप स्वयं को भक्ति के लिए प्रशिक्षित करेंगे तो आपको खुशी होगी। इस समय की अटकलों में उलझना आकर्षक हो सकता है, लेकिन पॉल कहते हैं, ईश्वर भक्ति पर ध्यान केंद्रित रखें। इसीलिए हम श्रम करते हैं और प्रयास करते हैं, काम की शर्तें, क्योंकि हमने अपनी आशा जीवित ईश्वर पर रखी है, जो सभी लोगों का और विशेषकर उन लोगों का जो विश्वास करते हैं उद्धार करता है। मैंने पहले ही एक व्याख्यान में कहा था, वह सभी लोगों का रक्षक है और फिर वह अपना शासन न्यायी और अन्यायी दोनों पर थोप देता है, और वह हर किसी के लिए प्रावधान करता है। वह अपनी दुनिया के भरण पोषण के लिए प्राकृतिक दुनिया के माध्यम से प्रावधान करता है और हर दिन दुनिया को उस फैसले से बचाता है जिसका वह हकदार है और एक दिन उसे मिलेगा। लेकिन जब तक वह फैसला नहीं आता, वह सामान्य अर्थों में लोगों को बचा रहा है, परंतु वह विशेष रूप से उन लोगों को बचा रहा है जो सुसमाचार में विश्वास करते हैं और फिर वे उसके साथ संगति में आते हैं और वे उसके अनुबंधित लोग बन जाते हैं। पॉल उस बात को जारी रखता है जिसे मैं लाल अक्षरों और आदेशों में बना रहा हूं, और यह एक बहुत ही कमांड समृद्ध मार्ग है। उसने मसीह का वर्णन करने और मंत्रालय की योग्यताओं का वर्णन करने और भगवान की दया और कृपा का वर्णन करने के लिए एक नींव रखी है, लेकिन अब वह वास्तव में तीमुथियुस के साथ नाक से नाक उतर रहा है और कह रहा है, तीमुथियुस, मसीह के प्रकाश में सुसमाचार के आह्वान के प्रकाश में जब तुम्हें उद्धार प्राप्त हुआ तब की गई भविष्यवाणियों के बारे में इन बातों की आज्ञा दो और सिखाओ। और वहां फिर से चार्ज के लिए वह क्रिया है। तीमुथियुस एक आरोप के अधीन है, क्योंकि वह अब एक आरोप के अधीन है, उस पर दूसरों पर आरोप लगाने का आरोप लगाया गया है। इसलिए कि आप युवा हैं, किसी को भी अपने ऊपर तुच्छ दृष्टि से न देखने दें। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे एक अवलोकन के रूप में उल्लेख किया है, लेकिन मैं इसका उल्लेख यहां करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मंत्रालय में किस उम्र के हैं, कोई न कोई इसे आपके खिलाफ रखेगा। यदि आप युवा हैं तो बड़े लोग इसका उपयोग एक साधन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है वह अनुभवहीन है या वह बहुत छोटी है। और यदि आप हैं, यदि आपके बच्चे हैं, आप 30 या 40 के दशक में हैं, तो युवा लोग और वृद्ध लोग दोनों वे कह सकते हैं, ठीक है आप अपने बच्चों के साथ बहुत व्यस्त हैं। आपकी आलोचना हो सकती है क्योंकि आप जीवन के उस दौर में हैं। और फिर जाहिर है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तब हमें उम्र का भेदभाव मिलता है। और लोग कहते हैं ठीक है वह पहाड़ी के ऊपर है, देखो उसने श्रवण यंत्र पहन रखा है। मैंने अभी श्रवण यंत्र नहीं पहना है, लेकिन मेरे पास वह है, क्योंकि जब कोविड आया तो मैं कक्षा में लड़कियों को उनके मुखौटे के माध्यम से बात करते हुए नहीं सुन सका, और इसलिए मैंने श्रवण यंत्र खरीदे और मैं अभी भी महिलाओं को उनके मुखौटे के माध्यम से बात करते हुए नहीं सुन सका, लेकिन कम से कम मैंने कोशिश की, लेकिन इससे मैं अधिक उम्र की दिखने लगी। और आपको बस मंत्रालय में तैयार रहना होगा, लोग आपकी आलोचना करने के लिए कोई भी कारण ढूंढ लेंगे। आप बहुत औपचारिक कपड़े पहनते हैं, आप पर्याप्त औपचारिक पोशाक नहीं पहनते हैं, आपने रविवार की रात को शॉर्ट्स पहना है, आपको चर्च में शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहिए, आपने रविवार की रात को पैंट पहना है, आपको गर्मियों के दौरान चर्च में इतना औपचारिक नहीं दिखना चाहिए। मेरा मतलब है एक मंत्री के रूप में आपको बदनाम करने के लिए लोग जिन चीजों का इस्तेमाल करेंगे वह पागलपन है, लेकिन पॉल बस इसे लेता है। तीमुथियुस स्पष्टतः छोटा है, इसलिए वे कहते हैं आलोचना के लिए तैयार रहें और इसे अपने ऊपर प्रभावित न होने दें, लेकिन एक उदाहरण स्थापित करें। आलोचना का उपयोग आपको प्रेरित करने के लिए करें, आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं, दूसरा गाल आगे कर सकते हैं, यह इसे रखने का एक तरीका है, या आग के कोयले को उनके सिर पर रख सकते हैं। आपके द्वारा निर्धारित उदाहरण से वाणी में, आचरण में, प्रेम में, आस्था में, पवित्रता में विश्वास रखने वालों के लिए, मुझे नहीं लगता कि और ग्रीक में है। और जब वह शुद्धता कहता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके मन में एक निर्धारित सूची है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई निर्धारित सूची है। मुझे लगता है कि वह बस कुछ चीजें वहां फेंक रहा है जो तीमुथी की विशिष्ट होंगी। यदि तीमुथियुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और आदेश दे रहा है और सिखा रहा है और आलोचना पाता है तो वह अपनी सेवा में अनुकरणीय बनकर जवाब देगा, वह इसे सुनेगा, इससे उसे घाव हो सकता है, लेकिन वह इसे लोगों के खिलाफ नहीं रखेगा और वह अपना काम करना जारी रखेगा और भगवान को आलोचकों को सुलझाने देगा। जब तक मैं नहीं आता, याद है उन्होंने पहले कहा था, मुझे आशा है कि मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। जब तक मैं न आऊं, अपने आप को धर्म ग्रंथों के सार्वजनिक पाठन में समर्पित कर दीजिए। यह एक संकेत है कि प्रारंभिक चर्च पूजा आराधनालय पूजा की तरह थी। आराधनालय में वे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और फिर कोई उसकी व्याख्या करता है और शायद दो या तीन लोग धर्म ग्रंथ की व्याख्या देते हैं। यह आरंभिक चर्च का पैटर्न था और यह इस बात की पृष्ठभूमि है कि हम जिस तरह से पूजा करते हैं वह क्यों करते हैं। हम चर्च में क्या करते हैं? उम्मीद है हम भगवान के वचन पढ़ते हैं और धर्मोपदेश के लिए सिर्फ एक या दो छंद नहीं, बल्कि उम्मीद है हम बहुत सारे रविवारों पर बहुत सारे छंद पढ़ते हैं ताकि लोगों को एक मंडली के रूप में धर्म ग्रंथों से प्रोत्साहित किया जा सके जो पूरे रास्ते वापस चली गईं। पहली सदी में इफिसुस तक अपने आप को सार्वजनिक रूप से धर्म ग्रंथ पढ़ने, उपदेश देने और पढ़ाने में समर्पित करें। और मुझे नहीं लगता कि वे उपदेश और शिक्षण, मुझे नहीं लगता कि उन शब्दों को यहाँ आवश्यक रूप से अलग किया जाना चाहिए। अच्छा शिक्षण उपदेश देता है और उसमें उपदेश का अनुभव होता है। और हर तरह से जब हम उपदेश देते हैं, यदि हम निर्देश नहीं दे रहे हैं तो कुछ बिंदु पर यह अब ईसाई उपदेश नहीं है। धार्मिक शब्दों का प्रयोग करना केवल मूर्खतापूर्ण है। यीशु जब प्रचार करते थे तो हमेशा निर्देश देते थे। मैं सुसमाचार में ऐसे किसी भी प्रवचन के बारे में नहीं सोच सकता जो शिक्षाप्रद न हो, जहां यीशु केवल नारे दोहरा रहे हों। इसलिए हमें अपने उपदेश में मसीह के समान होने की आवश्यकता है और पॉल ने इसकी सराहना करते हुए लोगों से आह्वान किया है। और तात्पर्य यह है कि हम धर्मग्रंथ पढ़ेंगे और फिर कोई उसकी व्याख्या करेगा। वहां धर्मग्रंथ पर आधारित उपदेश और शिक्षण होने वाला है। पॉल एक व्यक्ति के रूप में तीमुथियुस के पास वापस आता है। अपने उपहार की उपेक्षा न करें जो आपको भविष्यवाणी के माध्यम से दिया गया था जब प्राचीनों के समूह ने आप पर हाथ रखा था। यह शायद उस घटना पर प्रकाश डालता है जिसका उल्लेख पहले किया गया है कि उसे उस घटना को याद करना चाहिए और प्रोत्साहित होना चाहिए। अधिक लाल अक्षर इन मामलों में मेहनती बने और अपने आप को पूरी तरह से उनके हवाले कर दे ताकि हर कोई आपकी प्रगति देख सके। अपने जीवन और सिद्धांत को करीब से देखें और उन पर कायम रहें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसका अनुवाद भी कर सकते हैं। जैसा कि आप करते हैं, आप खुद को और अपने श्रोताओं दोनों को बचाएंगे। तो कुछ अवलोकन। सबसे पहले शेफर्ड में एक अच्छा देहाती शिक्षक जो कुछ प्राप्त करता है उसे ईमानदारी से आगे बढ़ाता है। वह अपनी स्क्रिप्ट, कथा या एजेंडा नहीं बनाते हैं। और यहां मेरे मन में पद छह है, यदि आप भाइयों और बहनों को ये बातें बताते हैं तो वह उसे अब चार अध्यायों में निर्देश दे रहा है। उसे इन चीजों को आत्मसात करना होगा और लोगों के बीच मध्यस्थता करनी होगी। शेफर्ड में एक अच्छा देहाती शिक्षक यही करता है। वह जो प्राप्त करता है उसे पारित कर देता है। वह जाते जाते कुछ नहीं बना रहा है। एक और अवलोकन यह है कि कठिन परिश्रम देहाती देखभाल और वास्तव में आम तौर पर ईसाई आउटरीच का दैनिक किराया है। यदि हम श्लोक 7 को देखें तो इसके मध्य में स्वयं को ईश्वर भक्ति के लिए प्रशिक्षित करें और फिर वह वहां से चला जाता है। हमें ईसाइयों के रूप में अपना जीवन स्वयं जीना चाहिए और दूसरों की देखभाल करनी चाहिए। हमारे पास जीने के लिए अपना जीवन है। हमें अपनी जरूरतों का ध्यान रखना है। मैं कल रात आज के लिए तैयार हो रहा था और मेरे पास लगभग सब कुछ तैयार था, लेकिन इसमें मुझे 40 मिनट लग गए। मैं बहुत थका हुआ था। मैं बस बिस्तर पर जाना चाहता था। मुझे तैयार होने की जरूरत थी, लेकिन दिन की कड़ी मेहनत शुरू करने के लिए तैयार होने में मुझे 40 मिनट की कड़ी मेहनत करनी पड़ी। और विशेष रूप से यदि आप माता पिता हैं तो अपने घर को स्वयं नष्ट होने से बचाने और चीजों को आधे अधूरे ढंग से व्यवस्थित रखने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खैर, भगवान के घर को देखभाल करने वालों की एक टीम से निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। और बलिदान का उदाहरण और प्रयास का उदाहरण देहाती नेताओं और अकादमिक नेताओं से शुरू होता है। और यदि पादरी और उपयाजक क्लेनेक्स और नार्थेक्स को फर्श से नहीं उठाएंगे, क्योंकि यह चौकीदार का काम है, तो किसी और से यह करने की अपेक्षा न करें। पादरी पर मेरी टिप्पणी में, मुझे पॉल की सफलता के रहस्य पर एक पूरा खंड मिला है, और यह थोड़ा सा मौखिक है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह उसकी कार्य नीति है। उसने मेहनत की और हम देहातियों के माध्यम से जा सकते हैं, और वास्तव में उस निबंध में मैं ऐसा करता हूं। मैं एक तीमुथियुस, दो तीमुथियुस, तीतुस से गुजरता हूं, और मैं उन सभी स्थानों का उल्लेख करता हूं जिनके बारे में पॉल परिश्रम के बारे में बात करता है। और श्रम और प्रयास और देखभाल और स्वयं को प्रशिक्षित करना। बाइबल कहती है, और मुझे यह श्लोक बहुत पसंद है, तुम्हें 6 दिन काम करना होगा। काम कोई अभिशाप नहीं है। काम को पाप के कारण शापित किया गया है, इसलिए यह जितना होना चाहिए था उससे कहीं अधिक प्रयास है। लेकिन ईश्वर की महिमा करने और ईश्वर द्वारा बनाई गई दुनिया को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ करने के लिए जीवन शक्ति, दूरदर्शिता, उद्देश्य की भावना और उपहार होना एक आशीर्वाद है। परमेश्वर की महिमा करने का अर्थ यह सोचना नहीं है कि आप महिमामय परमेश्वर हैं। मेरा मतलब है, शुरुआत करने के लिए यह एक अच्छी जगह है। लेकिन पुराने नियम की विरासत, जो आज भी यहूदी लोगों के बीच जीवित है। कितने नोबेल पुरस्कार विजेता यहूदी हैं? यहूदी धर्म में एक लोकाचार है, बाइबल के समय से लोग खुद से कुछ बनाने की उम्मीद करते हैं। हो सकता है कि वे ईश्वर में विश्वास भी न करें, लेकिन फिर भी उनका यह दृष्टिकोण है कि यह एक ऐसी दुनिया है जिसका उपयोग हमें किसी चीज की बेहतरी के लिए करने की आवश्यकता है। और कभी कभी वे धार्मिक यहूदी होते हैं, और इसलिए वे उस दुनिया को बेहतर बना रहे हैं जिसे भगवान ने बनाया है, और वे भगवान में विश्वास करते हैं, और यह बहुत अच्छा है। मैं केवल यह रेखांकित करना चाहता हूं कि पॉल और प्रेरित काम और श्रम के बारे में कितनी बात करते हैं। और योग्यताओं पर वापस जाएं, तो योग्यताओं की कई शर्तें हैं। सम्मानजनक कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लोग देख सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, उसे यह सौंपना होगा। यदि आप आलसी हैं, तो आपको वह कभी नहीं मिलेगा। और क्योंकि बहुत सारे पादरी हैं, बस आप ही प्रबंधक हैं। और क्योंकि 7 घातक पापों में से एक आलस्य है, पादरी आलसी होने के लिए प्रलोभित होते हैं, और यह पाप है। और यदि आप इस पर काम नहीं करते हैं, तो देहाती पत्रियों में लगभग कुछ भी काम नहीं करता है। यीशु ने काम किया। हमें उसके काम दिन रहते ही करने चाहिए जिसने हमें भेजा है। रात आ रही है जब कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता। और जब आप यीशु के जीवन का अध्ययन करते हैं, तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। उसके पास कम से कम हर विश्राम दिन था, लेकिन वह फुर्सत का आदमी नहीं था। साथ ही वह सफेदपोश नहीं था। इसलिए एक कार्यकारी बनना या ज्ञान कार्यकर्ता बनना उनकी पारिवारिक विरासत में भी नहीं था। हमें अधिकारियों की जरूरत है, हमें ज्ञान कार्यकर्ताओं की जरूरत है, और हमें सफेदपोश लोगों की जरूरत है। लेकिन उनमें उत्पादकता का लोकाचार होना चाहिए, सर्वशक्तिमान डॉलर के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए। उन्हें धार्मिकता को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, न कि केवल अपने बैंक या अपने स्टॉक ब्रोकरेज या जो कुछ भी उनका सफेदपोश हिस्सा है उसके प्रचार में। इसलिए मैं इसके बारे में केवल इसलिए पर्याप्त नहीं कह सकता क्योंकि मुझे लगता है शायद धार्मिक शिक्षा में होने के कारण और साथ ही देहाती काम में शामिल होने के कारण मैं देखता हूं कि कितनी बार लोगों का पतन होता है और कैसे लोग कम उपलब्धि हासिल कर पाते हैं। और फिर कभी कभी वे दोष देंगे। वे इस व्यक्ति या उस ताकत या समय या किसी चीज को दोषी ठहराएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा योगदान कारक महत्वाकांक्षा की कमी और प्रयास की कमी है। लोगों के पास डिजिटल चीजों और इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए तो काफी समय है, लेकिन टर्म पेपर्स के लिए उनके पास समय नहीं है। उनके पास इसके लिए बहुत समय है। मुझे लगता है कि यह एप्पल 6 है। यह केवल लगभग 10 वर्ष पुराना है। उनके पास आत्मनुशासन और आत्मत्याग के अलावा अन्य चीजों के लिए बहुत समय है, जो भगवान की सेवा और दूसरों की सेवा के लिए आवश्यक हैं। इसे किसी कारण से डायकोनिया सेवा कहा जाता है। हमने यह भी देखा कि आत्माओं की मसीह जैसी देखभाल के लिए अधिकतम प्रयास और परिश्रम की आवश्यकता होती है। मैं श्लोक 11 से 16 तक वापस जाना चाहता हूँ। उन सभी लाल अक्षरों को देखो, और वास्तव में यह एक तरह से चुनौतीपूर्ण है। और यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत अधिक खपत होती है, और यह यहां तक कि यह आपको सवाल करने पर भी मजबूर कर सकता है कि क्या पॉल का वास्तव में यही मतलब है, खासकर सबसे आखिरी भाग। आप अपने आप को और अपने सुनने वालों दोनों को बचाएंगे। मैंने सोचा कि यीशु उद्धारकर्ता थे। मुझे लगा कि भगवान ही उद्धारकर्ता हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन पॉल अन्यत्र कहता है, हम ईश्वर के साथ सहश्रमिक हैं। और अक्सर परमेश्वर सुसमाचार के उल्लेखनीय सेवकों के संबंध में अनुग्रह के उल्लेखनीय कार्य करता है। और पॉल जैसे लोग हैं जिन्होंने कॉल का जवाब दिया, और वे खुद को उस दर्शन के प्रति समर्पित कर देते हैं जो भगवान ने उन्हें दिया है। कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, न कि केवल अपने बैंक या अपने स्टॉक ब्रोकरेज या जो कुछ भी उनका सफेदपोश हिस्सा है उसके प्रचार में। इसलिए मैं इसके बारे में केवल इसलिए पर्याप्त नहीं कह सकता क्योंकि मुझे लगता है शायद धार्मिक शिक्षा में होने के कारण और साथ ही देहाती काम में शामिल होने के कारण मैं देखता हूँ कि कितनी बार लोगों का पतन होता है और कैसे लोग कम उपलब्धि हासिल कर पाते हैं। और फिर कभी कभी वे दोष देंगे। प्रेरितों के काम में एक जगह पॉल कहते हैं, हम स्वर्गीय दर्शन के प्रति अवज्ञाकारी नहीं थे। उन्हें एक दृष्टिकोण दिया गया कि क्या हो सकता है, और उन्होंने खुद को इसके लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। इसलिए श्लोक 15 में इन मामलों में मेहनती बने, अपने आप को पूरी तरह से उन्हें सौंप दें ताकि हर कोई आपकी प्रगति देख सके। अब वहां तनाव है क्योंकि यीशु कहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता का अभ्यास मत करो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पॉल कह रहा है, मैं वहां यीशु से सहमत नहीं हूं। तिमोथी, तुम बाहर जाओ और खड़े रहो और अपना नाम बनाओ। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कह रहा है। मुझे लगता है कि वह कह रहे हैं कि आपको अपने मंत्रालय और मसीह के प्रति इतना समर्पित होना चाहिए कि यह उन लोगों के लिए एक गवाह और प्रोत्साहन होगा जो आपको देखने के अलावा मदद नहीं कर सकते। यदि आप उनके पादरी हैं तो वे आपसे मिलेंगे, और यदि वे आपको केवल गोल्फ खेलते हुए, कॉफी पीते हुए और उन कार्यों को करने में सक्रिय नहीं होते हुए देखते हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है, तो वे आपकी प्रगति नहीं देख पाएंगे, और बहुत सारी बुरी चीजें होंगी। सबसे बढ़कर वे प्रगति नहीं करेंगे क्योंकि उनकी प्रगति के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आपको अपना जीवन जीने के साथ साथ उनकी सेवा भी करनी होगी। और हम में से हर कोई जो कुछ भी करता है उससे सेवानिवृत्त हो सकता है और अपना सारा दिन केवल अपने लिए काम करने में बिता सकता है। आप अपने लिए करने के लिए हमेशा नई चीजें सोच सकते हैं, एक नई किताब पढ़े या कुछ नया सॉफ्टवेयर प्राप्त करें या एक नया बगीचा बनाएं या सभी प्रकार की चीजें हैं। लेकिन ईसाइयों के रूप में हमें अपने जीवन को अपने लिए जीने के बारे में सावधान रहना होगा, क्योंकि हमारा जीवन ईश्वर का निपटान है और हमें अपना बहुत सारा समय उन चीजों में लगाना है जो अन्य लोगों को लाभ पहुंचाती हैं। मुझे याद है, एक पिता के रूप में मेरे जीवन में एक ऐसा दौर आया था जब मुझे बहुत कठिन निर्णय लेना पड़ा था, और यह मेरे छोटे बेटे के संबंध में था जिसने निर्णय लिया कि उसे वास्तव में एक निश्चित खेल पसंद है, और वह खेल था बेसबॉल। और मैं चर्च और अपने मदरसा शिक्षण में बहुत सक्रिय और व्यस्त था, और पार्क डिस्ट्रिक्ट लीग में उनके पास मेरे बेटे को टीम में लेने के लिए पर्याप्त कोच नहीं थे क्योंकि हम इस क्षेत्र में नए थे। वह सूची में देर से आया और वहां बहुत सारे लड़के थे और उनकी कोई टीम नहीं थी और उनके पास कोई कोच नहीं था, और इसलिए मेरा बेटा मेरे पास आया और मैं अपनी मेज पर व्यस्त था और उसने कहा, पिताजी क्या आप कोच बनेंगे? और मैंने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह एक बड़ी प्रतिबद्धता होगी, मैं यह नहीं करने जा रहा हूं। तो वो था मेरा छोटा बेटा, और मेरा बड़ा बेटा जो उस समय लगभग 13 वर्ष का था, थोड़ी देर से शायद 1 घंटे बाद आया। उसने कहा, पिताजी, और मैंने ऊपर देखा और मैंने कहा, हाँ, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, बस मुझे एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप वास्तव में व्यस्त हैं और आपको बहुत सी चीजें करनी हैं, लेकिन उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि 10 वर्षों में आप चाहेंगे कि आपके पास और अधिक किताबें और लेख लिखे जाएं या आप इसके लिए समय निकालें, मीका के कोच बने? खैर, इसने मुझे धूम्रपान कर दिया, मुझे उस बारे में सोचना था, और मेरे बेटे के साथ मेरे अच्छे संबंध थे, इसलिए एक माता पिता के रूप में वह यहां से निकलना चाहता है, लेकिन हमारे बीच अच्छे संबंध थे और मैंने उसके फैसले का सम्मान किया। और मैंने वर्षों से सीखा है अपने बच्चों की बात सुने, क्योंकि कभी कभी वे देवदूत होते हैं या वे भविष्यवक्ता होते हैं। और इस तरह बेसबॉल कोचिंग में 10 वर्षों की भागीदारी शुरू हुई। एक बात दूसरे का नेतृत्व करती है, और उस समुदाय में पिताओं को आगे बढ़ने और अपने बेटों में रुचि दिखाने की वास्तविक आवश्यकता थी, और निःसंदेह टीम खेलों में ये दूसरे लोगों के बेटे हैं। परिणामस्वरूप जो चीजें हुईं उनमें से एक, मैं उस समुदाय के एक चर्च में सेवा कर रहा था और मैं उस समुदाय में नया था, यह उस देश का एक हिस्सा था जिसमें मैं नहीं रहता था, और यह पता चला कि वहां बहुत सारे लोग थे, उस समुदाय के वे लोग जिनके बच्चे या पोते पोतियां उस समुदाय में वह खेल खेलते थे। और जब मैं चर्च में पढ़ाता या प्रचार करता था तो लोग वास्तव में मेरी बात नहीं सुनते थे, जब तक मैं कोच नहीं बन गया, और अचानक मैं ऐसा व्यक्ति बन गया जो उनके लिए मायने रखता था, क्योंकि मैंने प्राथमिकता दी थी, मेरा मतलब है, यह कुछ था, है ना, यह मेरा बच्चा था। लेकिन निःसंदेह आप खेल में अपने बच्चे को प्राथमिकता नहीं दे सकते, आपको पूरी टीम को प्रशिक्षित करना होगा, तुम्हें सभी बच्चों की देखभाल करनी है। अब अचानक मेरे बारे में लोगों की धारणा अलग थी, क्योंकि पीछे जाकर मैंने अपने बेटे की बात सुनी थी और कड़ी मेहनत करने का फैसला किया था। और क्या बेसबॉल कोच बनना कठिन काम है? किसी भी कोचिंग की तरह यदि आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो यह जीवन की एक और पूरी परत है, जटिलता की एक और परत है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीवन सबसे पहले हमारी जरूरतों के लिए नहीं है, जीवन सबसे पहले ईश्वर की पुकार और हमारे लिए ईश्वर के इरादों के लिए है, और फिर वही सांसारिक मानवीय चीजें जो हमारे जीवन का निर्माण करती हैं, हमारे पास मौजूद अवसरों का निर्माण करती हैं। कभी कभी अन्य लोगों की सेवा करके ईश्वर की सेवा करना, और इसका मतलब उपदेश देना हो सकता है, लेकिन इसका मतलब अक्सर सामुदायिक सेवा ही होता है। या आपके पड़ोस में आंगन है या सड़क का वह हिस्सा है जहां बच्चे आ सकते हैं, और वहां एक माता पिता हैं जो बच्चों की देखरेख करते हैं और उन पर नजर रखते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को परेशानी होती है क्योंकि आसपास कोई माता पिता नहीं होते हैं, और बच्चों पर ध्यान देना एक बलिदान है। लेकिन ऐसे परिवार भी हैं जो निर्णय लेते हैं, हमें एक आय होने वाली है, हमारे घर पर माता पिता होंगे, हम अपने बच्चों की देखभाल करेंगे और इससे अन्य बच्चों की भी देखभाल के अवसर खुलेंगे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि इसमें परिश्रम है, तीव्रता का एक स्तर है जिसे अत्यधिक माना जा सकता है, और मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि हम अति उत्साही हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप भी काम में व्यस्त रह सकते हैं, आपकी सेहत खराब हो सकती है, आप इतने उत्साही हो जाते हैं कि आप असहनीय हो जाते हैं। लेकिन यह भी तथ्य हो सकता है कि हमारे समाज में फुर्सत और मौजमस्ती और लॉटरी जीतना और यात्रा करना और ये सभी आत्मभोग के कार्य जो बहुत मजेदार और आनंददायक हैं और बहुत अधिक आय की आवश्यकता होती है, और हमें काम करना पड़ता है और काम करना पड़ता है और काम करना पड़ता है। आप दुनिया के जिस हिस्से में हैं उसके आधार पर हम स्कीइंग कर सकते हैं और ये अलग अलग चीजें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में खुद को शामिल करने के कई तरीके हैं, उन साधनों के साथ जो स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं, और खुद को अन्य लोगों के लिए बाहर न रखें। और पौलुस तीमुथियुस को बुलाता है कि वह तुम्हारे जीवन और उपदेश को ध्यान से देखे और उन पर दृढ़ रहे, न केवल आपका सिद्धांत बल्कि आपका जीवन, आप कैसे रहते हैं, आप किसकी सेवा कर रहे हैं, आप अपना वक्त कैसे बिताते हैं। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो और इन चीजों के प्रति मेहनती बनो। यह आप और आपका अनुसरण करने वालों दोनों के युगांतिक कल्याण की कुंजी है, और यह एक ऐसा मामला है जहां पॉल भविष्य में मुक्ति के बारे में बात करता है। उन्हें यहां औचित्य पर संदेह नहीं है, और एक अर्थ में भगवान के आदेश और भगवान के वादे से हम दुनिया की नींद से पहले बचाए गए हैं। यह मुक्ति और ईश्वर के लोगों के बाइबल दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा है। फिर पॉल अक्सर मसीह की मृत्यु में हमारी मुक्ति का पता लगाता है। हमें क्रूस पर मसीह के साथ मार डाला गया और हम उसके साथ पुनर्जीवित हुए और हम महिमा में उसके साथ बैठे हैं। वह इसके बारे में इस तरह से बात कर सकता है कि यह कैलवरी में एक सौदा हो चुका है और भगवान की भविष्य की दृष्टि में एक पूरा सौदा हो चुका है। लेकिन यहां वह अंतिम परिणाम, हमारे सभी श्रम के अंतिम पुरस्कार की कल्पना करता है, और यह अभी कैसे है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। यह एक रहस्य है, और कई बार ऐसा लगता है कि यह व्यर्थ है। मैं 1995 से 2012 तक अक्सर सूडान जाता रहा और सुरक्षा ने इसे बंद कर दिया। चर्चों को ध्वस्त कर दिया गया और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और हमें आश्चर्य हुआ कि क्या इससे कोई फायदा हुआ। और फिर कई साल बाद मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्से में एक शादी में था और वहां सूडान के लोग थे। मैंने कहा, चर्च का क्या हुआ? और उन्होंने कहा, हम बड़े हो गए हैं और हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। और उन्होंने कहा, क्योंकि हमने इतने वर्षों तक वे सम्मेलन किए, हम जानते हैं कि हम क्या मानते हैं और वे हमें तोड़ नहीं सकते। और इसलिए आप देखते हैं कि चीजों को टुकड़ों में कैसे उड़ाया जा सकता है, लेकिन भगवान की बुद्धि में भविष्य की गणना होती है जिसमें वर्तमान की वास्तविक सच्चाई देखी जाएगी। हम चीजें वैसी नहीं देखते जैसी वास्तव में हैं। हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम उन्हें देखते हैं और हम भगवान नहीं हैं। और कभी कभी हम नीचे की ओर होते हैं। कभी कभी हम इतिहास के एक हिस्से में होते हैं, हम दुनिया के एक हिस्से में होते हैं और चर्च मर रहा होता है। चर्च पर अत्याचार हो रहा है। हम नहीं जानते क्यों। कुछ दिनों में यह कहा जाता है कि ठीक करने की शक्ति मौजूद नहीं थी या ठीक करने की शक्ति यीशु के मंत्रालय में मौजूद थी। यीशु पिता की इच्छा और विधान पर निर्भर थे और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और उस दिन वह जो कर सकते थे वह विश्वास और शक्ति से करते थे, या एक स्थान का कहना है कि वह उनके अविश्वास के कारण वहां कई चमत्कार नहीं कर सके। यह कितना अधिक सच है। कभी कभी ईश्वर हमें एक कार्यभार देता है और वह ऐसी जगह होता है जहां चीजें खत्म होने वाली होती हैं। लेकिन असली परीक्षा आखिरी दिन है और मैं इसे कहता हूं और मुझे आशा है कि आपको यह अभिव्यक्ति पसंद आएगी। मेरे छात्र ऐसा करते हैं। भविष्य की ऑन्टोलॉजिकल प्राथमिकता। ऑन्टोलॉजी चीजों के होने के तरीके का अध्ययन है। मनुष्य के रूप में हम जो देखते हैं और जो है उसका वर्णन करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते हैं क्योंकि सब कुछ अंतिम गणना की ओर बढ़ने वाली रेखा पर है। और वह अंतिम हिसाब इस पर फैसला होगा कि अभी क्या चल रहा है जिसे हम नहीं देख सकते। तो तीमुथियुस इफिसुस में भ्रम, शोर और विरोध में परिश्रम कर रहा है और वह कुछ अच्छी चीजें और बहुत सारी बुरी चीजें देखने जा रहा है। और हाइमेनियस और अलेक्जेंडर पृष्ठभूमि में हैं और ये लोग चीजों को तोड़ मरोड़ रहे हैं और शादी से मना कर रहे हैं, भूल रहे हैं। कितनी गड़बड़ है। और वह नेताओं की तलाश करेगा, उपयाजकों की तलाश करेगा और उन्हें प्रशिक्षित करने का प्रयास करेगा। और रास्ते में प्रगति के लिए प्रतिसंकेतक भी मौजूद रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पॉल में श्लोक 11 से श्लोक 16 तक इतने सारे लाल अक्षर क्यों हैं? ये मेरे लाल अक्षर हैं, ग्रीक पाठ के लाल अक्षर या अंग्रेजी पाठ के लाल अक्षर नहीं। मैंने अभी उन्हें अंदर डाला है। ये ऐसी चीजें हैं जो पॉल की शिक्षा के नैतिक अनुप्रयोग हैं। उसके पास वो सारी चीजें हैं। यदि मैं उस अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता हूं जिसके बारे में मैं सोचता हूं कि वे संभवतः सभी खेलों में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से बेसबॉल में इसका उपयोग करते हैं। यह आश्चर्यजनक है। मैं जितनी अधिक मेहनत करता हूं मैं उतना ही अधिक भाग्यशाली होता हूं, है ना? जितना अधिक हम अपने आप को उस कार्य के लिए खोलते हैं जिसे करने के लिए ईश्वर हमें सक्षम बनाता है, हम उतने ही अधिक फलदायी बनेंगे। हमें बस ईश्वर में विश्वास करना है और ईसा मसीह में विश्वास करना है, ताकि हम ईश्वर में अपनी आशा को केवल उन चीजों तक सीमित न रखें जो हम अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप तुरंत देख सकते हैं। लेकिन हम 2 साल या 3 साल के बच्चे में इस भरोसे के साथ बीज बोते हैं कि जब वे 12 या 13 या 42 और 43 साल के हो जाएंगे तो हम उनमें जो डालेंगे भगवान उसमें से फल लाएंगे। और उसी तरह एक शादी भी बहुत शुष्क और बंजर हो सकती है, लेकिन हमें भगवान पर भरोसा है। हमें विश्वास है कि वह इसमें से कुछ ला सकते हैं। सामूहिक नेतृत्व बहुत कठिन कदम हो सकता है, लेकिन मसीह हमारी आशा है क्योंकि वह हमारी आशा है और वह उठ गया है और वह शासन करता है। जैसे जैसे हम दृढ़ रहेंगे हम खुद को और अपने नायकों दोनों को बचाएंगे। धन्यवाद। यह डॉक्टर रॉबर्ट डब्ल्यू यारब्रो और देहाती पत्रों पर उनकी शिक्षा देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए प्रेरितिक निर्देश है। 17:5-1 तीमुथियुस 4